to the point that anyone, he may be poor and wretched, but still he can come to this sampradaya and take this love given by Chaitanya Mahaprabhu. He said, whose Rupa Goswami is no other than Sri Rupa Manjari, and her position is even more important than Lalita and Vishakha. Her service to Srimati Radhika is even much more than that of Lalita and Vishakha, because she is the she's the queen of service to Srimati Radhika. So she is the head of all the servants of Srimati Radhika. And even when Lalita and Vishakha have to go to take darshan of Yugal Kishore, they first have to ask permission from Rupa Manjari. Mahaprabhu empowered Sri Rupa Goswami, and he also asked all the others like Swarup Damodar to empower Rupa Goswami. Then Maharaj said that, why is it that instead of the bhajan sthali, we are sitting here next to the samadhi of Rupa Goswami? Because sam means samanchit. At the same, when you are so absorbed in the thoughts of your worshipable object, that you become basically at the same level. Sam means same. So samanchit. So Rupa Manjari's worshipable is Srimati Radhika. So she is so absorbed here in the samadhi. Samadhi, sam means equal, same. When you are at the same level, you are so absorbed in the thought of your worshipable deity, your worshipable Devya Vastu. Then he pointed to that verse that was engraved on the marble stone, written by Kavi Karanpur. Kavi Karanpur is the one who struck the thumb of Chaitanya Mahaprabhu. The big toe of Chaitanya Mahaprabhu, Angutha. He said he was Rupa Goswami is the most beloved of Swarup, who is Lalita ji, and Swarup Damodar gave all that was within his heart to Sri Rupa Goswami. Rupa Goswami gave his life and soul for Sri Chaitanya Mahaprabhu, and Chaitanya Mahaprabhu accepted it, and thus Rupa Goswami became the most beloved of Mahaprabhu. If he had not come, then by through whose medium would Chaitanya Mahaprabhu had given this message to the world? He did this in a very sahaj bhav, with the same understanding exactly the mood of Chaitanya Mahaprabhu. He was Mahaprabhu's samswarup, means the same moods that were within Mahaprabhu were also present within the heart of Rupa Goswami. He is the Vilas Rupa, the Vilas expansion of Chaitanya Mahaprabhu. Then Maharaj explained that Mahaprabhu, Rupa Goswami, that Chaitanya Mahaprabhu is no other than Lord Krishna himself. This is where he corrected me, I was saying something wrong. And he said Chaitanya Mahaprabhu is no other than Krishna himself. And just like Krishna, he has these two qualities. He is Param Karunamay, he is very merciful, and he is Rasik Shekhar. So through this quality of Param Karuna, he spread the message of Bhakti all over the world. And through this quality of Rasik Shekhar, he experienced the mood of Srimati Radhika. So he did because others had given bhakti also, but he specifically spread the message of Ragamarga Bhakti. He said, today we have come to his samadhi, so we should fully surrender unto the lotus feet of Rupa Goswami. He said, just like he used to sit here and he used to do bhajan, and Jiva Goswami used to serve him. Once some great pundit came by and asked Rupa Goswami, what are you writing? I will correct whatever you are writing. Rupa Goswami said, I am writing Bhakti Rasamrita Sindhu, and you can please correct it. and he narrated a particular verse in which he had compared the desire for bhukti and mukti as pishachini, like a had said that this desire is like a witch. And when this pundit heard this, he said, "You should not have written like this." So Rupa Goswami said, "Okay, you can correct it," and he left for to take his bath in Jamuna. When Jiva Goswami heard this, he came to Rupa Goswami and he said, "Oh, you have become such a great vidwan, such a great pundit, that you can also correct what Rupa Goswami has written." And then he had an argument with this pundit, and he defeated him in this, in his argument. He explained to him what was the reason Rupa Goswami had used this word. When Rupa Goswami returned, this pundit asked him, "Who is this little boy?" Rupa Goswami said, "He's my disciple." The pundit said, "He's very intelligent, and he actually explained to me what was the reason you had used this word." Rupa Goswami understood that Jiva must have argued with this pundit, and when this pundit left, he chastised Jiva Goswami and he said, "This was a Brahman, and the Brahman needs some respect. So all I was trying to do was show him some respect by agreeing to what his desire was. His desire was to correct what I have written, so I was just showing some respect to him. And you have become so proud that you can come and disrespect these Brahmins." So Rupa Goswami became very, very grave. Maharaj said that both of them in their position had done the right thing. From the perspective of a spiritual master, what Rupa Goswami did was right. He chastised his disciples because he had to teach that one should become more humble than a blade of grass. So for that reason, what Rupa Goswami did was perfectly fine. And from his position, what Jiva Goswami did was also correct, because it's the duty of the disciple that if he hears anything wrong about the guru, he should do anything to protect his guru. Whether it is in terms of arguments, if someone is spreading something wrong thing about the spiritual master, then one should try to defeat that person. So both of them did, from their positions, the right thing. Then Jiva Goswami, because Rupa Goswami chastised him, so he and told him to leave. Jiva Goswami left and went and started living in a crocodile cave. And day and night he used to cry, and all he used to take was a little matcha. It's some buttermilk. The villagers used to come by and they used to say, "Oh, this Chota Baba, he is even more renowned than the Bada Baba." Bada Baba means Sanatan Goswami, the big Baba. This young Baba is so much more renowned and doing so much more tapasya. And at this time, Jiva Goswami also started writing the Sandarbhas. One day, when Sanatan Goswami came to that village, the villagers came and told him that, "Baba, there is another young Baba. There's another young Baba who stays here, and he cries day and night. He cries day and night." So when Sanatan Goswami went and looked into that crocodile cave, he saw that this was no other than Jiva Goswami. So he picked him up and brought him to his cottage. Next day, he went to Rupa Goswami's place. And at that time, there were a lot of Vaishnavas were assembled there, and Rupa Goswami was preaching to them that we should show mercy to the living entities, to the Jivas. We should show, by giving them the Krishna prem, we should show mercy to the Jivas of this world. Sanatan Goswami went up to him. He said, "Oh, you are preaching so nicely, but do you yourself follow what you are preaching?" He said, "What is your duty towards Jeev? You know, that poor Jeev, he did not do anything, and you chastise him that he is ready to give up his life." At that time, Rupa Goswami, he was already feeling within his heart bad that he had chastised him this way. So he immediately came, and when he saw the condition of Jiva Goswami, he was almost about to give up his life. So he personally, his Maharaj said, he had become so thin that his stomach and back had become one. So he was almost on the deathbed. So with his own hands, he gave him medicine and did upchar. He did his chikitsa. He treated Jiva Goswami with his own hands. And so he said this was the kind of love between the gurus and the disciples. He said, but nowadays this is not seen. Unless the guru provides all kinds of comfort to his disciples and food to eat 3 times a day, nice food to eat, the disciples would not come to him. But if he provides all these luxuries, hundreds and thousands of disciples would come. And similarly, the gurus have also become quite corrupt. That have meant most of the gurus are also not right, corrupt. So he said, so he says, now I pray at the lotus feet of Rupa Goswami that he gives all of you good intelligence so you can progress in spiritual life. So he was saying that these are the deities of Radha Damodar, Radha Chaitanya, Radha Madhava, who was Jayadeva Goswami. He said this deity of Radha Damodar was manifested by he actually said Rupa Goswami, right? Who was Radha Damodar?
Rupa Goswami, he said this by his eyes.
But he manifested the deities of Radha Damodar. And then he said that Sanatan Goswami gave, explained the story how that the Shila of Govardhan manifested. He said Sanatan Goswami every day used to go for the parikrama of Sri Giriraj Govardhan, and after doing the parikrama he would go to Mathura for Madhukari. So once, as he had grown very old and it was very very hot, so he was circumambulating Sri Giriraj Govardhan, and because of the heat he fainted and he just laid down on a big rock. And he said it wasn't really because of the heat, it was because of the heat of separation from Radha and Krishna. So Gurudev said it's easy to bear the heat of the sun, but it's very difficult to bear the heat of separation of Radha and Krishna. So it was the heat of separation from which Sanatana Goswami was burning, and because of which he fainted. And Krishna and Baldev, who were right at Govardhan, they could not see this. So they came and they put a chadar on Sanatana Goswami. And then when he became conscious, they told him that you don't need to come every day because you have grown old, and you don't have to come and circumambulate this Govardhan every day. It will give you a shila. And on that, Krishna made an impression of his lotus feet with an impression of the hoofs of a calf and that of his flute. And he said, if you just circumambulate this 3 or 4 times a day, then that would be equivalent to circumambulating the Giriraj Govardhan. Maharaj said, that is very fortunate that this shila is here. So if anyone who circumambulates this temple, then he gets the benefit, same benefit as that of circumambulating Sri Giriraj Govardhan.
What are the verse in what written on your summit?
I think only Prabhu can, I don't remember the word.
The association of pure devotees, and we are fortunate enough to have got that association. In spite of that, the perfect result we are not receiving. Why? This is the point. What is the wrong there? We should judge it. So many teachers, so many lectures, and so many discussions is without good effect. I think so. Because we are not proceeding at an means even. What is the good we are receiving? Bhakti, Parasanubhava, Virakti, Annatya. Yashatrika, Kalaha, Prapadda, Manasya. These three things are simultaneously at a time performed. by the practice of devotion. If we are performing devotees, there must be disagree or disattachment with the material things. These two will go simultaneously. But if we think what disattachment we have received, we find there nothing. Then the practice of devotion is of not properly used to for us. So we should try properly to attain devotion. If we do kirtan with the good tune and proper tune also, that will not be considered as devotion, because Mother Yashoda calling Krishna, "Oh Krishna, come here." Krishna comes to her lap and embraces him with both hands. But that sound, if I take, why the same result is not received? If we play on that state, like that sound is coming out, in spite of that Krishna does not come to us. Why? Krishna knows that it is not my mother. It is state, void of that love. Only the sound is coming. Therefore, the love is the main thing, not the sound. But we are practicing the sound. We are practicing the other things. We are trying to understand Srimad Bhagavat by the education of Sanskrit and intelligence only. Vasya Bhagavatam Rajyam No Buddha No Sya Tikaya. This is therefore advised, ordered by Lord Chaitanya Dev. So Bhaktya Bhagavatam, so why we are ordered to submit ourselves to the pure devotee who has got that sort of true love for Krishna? Unless and until that position we accept as our tutor or as our master, we cannot get the pure devotion. Thank you.
अघ्रामति निरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरनुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृतासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो. महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विजे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो. भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्यै क्षिप्त्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणा. अङ्गश्यामलिं शताभिरभितो मन्दे कृतेन्दीवरं जद्गञ्जागुदरोति साङ्गिदधतङ्गपट्टम्बरस्य श्रिया. वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितजलभुजं ध्यायेन् दामो. तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय माम चरणम्. रोगं संमुहुर्नेत्रयुगमं मृजन्तं karam bhoja jugmena satam kanishtam mohsa sakam pasthire kanka kanta sita daiva damo daram bhakti vaddham namami swaram sachidananda rupam lasat kundalam gokule brajmanam. Shri Damodarashtakam, Sanatana Goswami Tika. Yashodama, Krishna ke tini baam hathe dharan kare, tahar dakshin hat. Aar daan hathe tike lakhiya, beint uthe diyeche, uthaya. Hamara bangla bhi to samajh lega na? Nahi? बाया हाथ से दाहिना हाथ से कृष्ण को डरा रही है, धमका रही है, मारूं? और कृष्ण रो रहे, मैया मुझे मत मार, मुझे मत मार. उस समय में नेत्र जुगमामृजंतम, कृष्ण तार बाम हाथ दिए, दाया हाथ धरे लिए संजय सुदामा, बाया हाथ धरे क्रंदन करे, ओ करे, और हथेली द्वारा, हाथ के द्वारा आंखों को दोनों को मीच रहे हैं. झराझर नेत्रों से आंसू प्रवाहित हो रहे हैं और कह रहे हैं जे मैया मुझे मत मार, मुझे मत. जब बेत उठाती हैं तो वो पीछे चले जाते हैं. ये शायद हमने कह दिया था ना, कल रस्सी मंगाया इसको भी कह दिया, उसको बांध दिया. उन्होंने बांध दिया ये तो हो गए छे, ये सब गुली हो गए छे. तब यशोदा मैया कृष्ण को ओखल में बांधने के पश्चात, ओखल में कैसे बांधा, कृष्ण का पहले कमर बांधा और फिर बांध करके एक पेच लगा दिया पीछे, और फिर उसको लेकर के ओखल में बांधा, जिससे कृष्ण का हाथ वहां न पहुंच सके, कृष्ण हाथ ओखने जनु ना जाए. तखन यशोधामा बोले, जैसे छेले देर के बोलें, तुम्हारा देखा सुना करे, अभी रो रहा है, तुम लोग इसके पास में रहो. और कुछ चित्त विक्षिप्त सा उनका हो रहा है, मैंने गलत किया या ठीक किया अभी कुछ नहीं समझ रहे. बोलिए मैं जा रही हूं दधि मंथन करने के लिए, घर के और काम करने के लिए, तुम लोग बच्चे इसको देखना. इतने में दाम सिदाम सुदाम वसुदाम स्तो कृष्ण लवंग अर्जुन सुबल मधुमंगल इत्यादि आ गए. थोड़ी देर के बाद में रोहिणी मैया बलदेव को लेकर के नंद बाबा के बड़े भैया उपानंद के घर से वो भी आ गई. वो तो धीरे धीरे यशोदा मैया के यहां चली गई और देखा जी ये क्या हो रहा, गोपियों से पूछा. इधर बलदेव जी आए सखाओं के बीच में, उन्होंने देखा अरे ये छोटा भैया रो रहा है, आंसू कुछ सूख रहे हैं, काली भी लग रही है, काजल भी लग रहा, गंगा जमुना दोनों यहां पर प्रवाहित हो रहे हैं. अरे इसको ओखल में किसने बांध दिया, बड़े क्रोधित हो गए. तुमको भैया किसने बांधा, सखाओं से पूछा किसने बांधा, बड़ा उनको क्रोध हुआ. उन्होंने सोचा जिसने बांधा उसको मैं दंड दूंगा, बलदेव प्रभु दंड देने में समर्थ हैं. इसलिए वो पूछने लगे,
मधुमंगल जी ने कान में उनको कहा, काने ते बोलने मां बंधे छे, मां ने बांधा, सुनते ये मैया ने बांधा है, उनका सारा क्रोध दूर हो गया। जो सोदा मैया के यहां भी उनका नहीं चलेगा, बासल्य के मारे नहीं चलेगा, इसलिए वो निरुत्तर हो गए, चुपचाप हो गए, कुछ नहीं कर सके। सखाओं ने, बलदेव प्रभु जी ने कहा, बलदेव प्रभु जी बंधन खोल सकते थे, हो सकता है, किंतु यहां पर अभी सख रस में है, इसलिए ये भी नहीं खोल सकते। जब वो मधुर भाव में आएंगे तो शायद खोल सकते हैं, अन्यथा नहीं खोल सकते। सब सखाओं ने मिलकर के प्रस्ताव किया कि इस बंधन को खोल दिया जाए, गांठ को। मधुमंगल दौड़ करके आया, खोलने लगा, किंतु खुला नहीं। इतने में सिद्धांत जी आए, बोले अरे मैं खुलूंगा, उसको हटा करके जल्दी से ये। इतने में और 10-20-50 लड़के आ करके एक दूसरे को धक्का देते हुए खोलने लगे, किंतु कोई नहीं खोल सका। बात्सल्य रस का बंधन सख रस के द्वारा नहीं खुल सकता, नहीं खुला। अब तक कृष्ण पहले तो रो रहे थे, अब रोना अब बंद हो गया, और बच्चों के साथ में हंसने भी लगे। कृष्ण ने भी सोचा कि मैं खोल लूं, किंतु हाथ नहीं पहुंचा। आखिर कृष्ण ने बच्चों ने कहा, अच्छा एक बात करो, थोड़ा सा आगे बढ़ करके हम लोग चले खेलते हुए, और घर के बाद में हम लोग खेलेंगे। और इधर कृष्ण ने क्या सोचा, ओहो अभी और कुछ लीला करनी है। नारद जी ने जमलार्जुन को साफ दिया, एक तुम जाओ वृक्ष हो जाओ। नारद जी कहीं जा रहे थे और ये कुबेर के धनु कुबेर के पुत्र जमलार्जुन नल कुबेर मणिग्रीव किसी सरोवर में हिमालय के कैलाश के पास ही और एक सरोवर में उलंग होकर के अस्पराओं के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी उधर से जा रहे थे, अस्पराओं ने तो अपने कपड़े पहन करके और झट हाथ जोड़ करके दूर से खड़ी हो गई, नारद जी को प्रणाम किया। और ये उदंड धन के मत में उच्च कुल में जन्म लेने का और उच्च विद्या का गर्व और पांडित्य का गर्व, देखने में सुंदर सुकांत में, माने चार चीज, जन्म ऐश्वर्य सूत स्त्री, जिसको इन चीजों का गर्व होता है, धन का विद्या का उच्च कुल में जन्म लेने का और रूप का, वो भगवत भजन नहीं कर सकते, बड़ा भारी कठिन है। जिनको जो भजन कर सकते हैं वो बहुत उन्नत है। तो ये लोग गाली देने लगे, कहां चली गई हमें छोड़ करके, कहां का एक भिखारी आ गया और उसको देख करके यहां से छोड़ करके हमें चली गई, शराब भी पिए हुए थे। नारद जी ने कहा, देखो तो वृक्ष जैसे, इनको तनिक होश नहीं है। शंकर जी के मित्र कुबेर जी भक्त हैं और उनके लड़के ऐसे अधोगति में शराब पी करके अस्पराओं के साथ में ये भोग निष्ठा में मत्त हैं। अच्छा मैं तुमको दुरुस्त करता हूं, यह कह कर कभी शाप दिया, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। जब वृक्ष कहने के कहा, साथ ही साथ में अभी संपात का प्रभाव मालूम हुआ, उनको मालूम है हम लोग जड़ होकर के वृक्ष हो रहे हैं। जब उनके चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की करने लगे, प्रभु हमारे ऊपर में कृपा कीजिए, हम लोगों ने गलती की, हमारा अपराध हुआ, आप क्षमा करें। उनको दया आ गई, आज अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तब तक दंड तो भोगना पड़ेगा। जाओ तुम्हारा जन्म इधर उधर नहीं हो करके गोकुल में होगा, जमलाजी वृक्ष होकर के आएगा और वहां पर समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर कृष्ण स्वयं वहां पर आविर्भूत होंगे और खेलते 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 जब वो तुमको किसी प्रकार से स्पर्श कर देंगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम लोग इस सब से दूर हो जाएगा। साथ साथ में तुमको भक्ति भी होगी। कृष्ण ने अपने भक्त की रक्षा को क्या है सत्याभिधातम निजभक्त वृत्त भाषितम, अपना जो भक्त जो कह दिया है अपनी प्रतिज्ञा भी छोड़ करके भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले ये भगवान हैं, बड़े दयालु हैं। यद्यपि यहाँ पर माधुर्य रस की लीला हो रही है तो भी ऐश्वर्य तो दूर होगा नहीं, ऐश्वर्य रहे या न रहे नर्वत लीला उनकी होनी चाहिए। इस लीला में जोग माया ने उनको स्मरण करा दिया और झट उदोखल जो बंधा हुआ था उसको लेकर के और बच्चे भी उसको ठेलने लग गए। उनकी इच्छा हुई कि हम इनका उद्धार करें। बोलो इतना तो बोल लो कुछ। अब सखर यहाँ पर आरंभ हुआ। खींचते 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 जब दरवाजे के पास में लाए तो वहां पर दोनों वृक्ष एक से निकले हुए दो भागों में विभक्त, ओखल वहां अटक गई। कृष्ण वृक्षों से पार होकर के उस तरफ में चले गए और ओखल इधर में ऐसे अड़ गई। कृष्ण तो उधर में चले गए और सखा लोग इधर से ठेल रहे हैं। कृष्ण रस्सी से बंधे हुए हैं, रस्सी के द्वारा बंधे हुए और ओखल उस रस्सी से बनी हुई है। उस ओखल के स्पर्श से ही दोनों वृक्ष बड़े शब्द करते हुए और दोनों दो तरफ में गिरे। ऐसे ऐसे नहीं गिरे, बड़े जोर से शब्द हुआ। यहां एक विशेष मार्क करने की बात है। कृष्ण ने नहीं छुआ वृक्षों को, पार हो गए, रस्सी जो उनके कमर में लगी है उसे भी नहीं छुआ। उस रस्सी से जो छुआ हुआ ये ओखल है, ओखल के दोनों किनारे से वृक्षों में छुआ स्पर्श हुआ। जैसे कोई बिजली का तार है, तुम हाथ से मत छुओ किंतु एक लोहा उसमें से छू दो जो कि बिजली से लगी हुई है और बिजली से उस लोहा और उस लोहे से एक कोई तांबा लगा हुआ है उसको छू दो और वो तांबा एक पानी से छू रहा है, उस पानी को छूओ तो क्या होगा, बिजली उसमें चली आएगी। ऐसे ही कृष्ण की शक्ति अपने हाथ से नहीं छूने पर भी उस रस्सी के माध्यम से ओखल में आई और ओखल से दोनों को छुआ और दोनों का जितना पूर्व जन्म का संस्कार था बुरा वो सब जल करके खत्म हो गया और नारद ऋषि का भी संपात भी खत्म हो गया क्योंकि नारद जी ने ऐसा कहा। इसलिए कृष्ण किसी पर कृपा करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट भक्तों के माध्यम से, भक्तों के भक्तों के भक्तों के माध्यम से कृपा करते हैं और उसके द्वारा भगवान की कृपा संचरित होती है भक्तों में और भक्ति होती है। यहाँ पर इसी चीज को दिखलाया। बोलो को भगवान मान लो और कृष्ण से संबंधित गुरुदेव है मान लो, रस्सी है गुरुदेव और रस्सी के बाद में जो ओखल है उसको वैष्णव समान मान लो और जमलार्जुन है ये साधक हैं अथवा साधारण जीव हैं। गुरु की कृपा इसी के माध्यम से, भगवान से गुरु, गुरु से वैष्णव और वैष्णव से साधकों के ऊपर में आती है। यदि साधकों का ऐसे वैष्णव से भी संग हो तो वैष्णव लोग गुरु के पास में ले जाएंगे और गुरु कृष्ण के पास में जाएंगे। ये एक उत्प्रेक्षा यहाँ पर है। अब जबकि पेड़ सूट गए, बड़ा जोर से शब्द हुआ, नंद बाबा ब्रह्मांड घाट में स्नान करने के लिए जा रहे दौड़े उधर में, क्या हुआ, बिजली नहीं गिरी, आंधी नहीं आई और इतने जोरों से शब्द हुआ और इधर में जो सुधा मैया का प्राण धक धक कर रहा था, देखा जी कृष्ण कहाँ, अरे तो आंगन में नहीं है, कहाँ गया, उनका प्राण धक और ब्रजवासी जो जो ब्रज में जहाँ जहाँ था, कोसों तक, दूर तक, माइलों तक शब्द हुआ, जो जहाँ से था वहीं पर दौड़ा। ये तो जसोदा जी के घर के पास में कहीं हो रहा है कुछ, कोई पुतना की तरफ में या और कोई विपत्ति तो नहीं आई, इसे सब लोग वहाँ पर दौड़े। वहाँ पर आकर के देखा, अरे ये तो पेड़ गिरा हुआ है, कृष्ण उसके नीचे सबका हुआ है और सखा लोग डरे हुए सामने वहाँ पर हैं। नंद बाबा जी आकर के देखा, बड़े डर गए, अरे ये पेड़ यदि इनके ऊपर में गिर जाता तो न जाने क्या हो जाता। यशोदा मैया तो दूर से देख करके ही एकदम सूखी हुई लकड़ी की भांति हो गई। आज यदि ये मर जाता वृक्षों के तरफ में दब करके, आज क्या होता। सब लोग जहां तहां स्तंभित होकर के देख रहे हैं। नंद बाबा धीरे 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 समझने के लिए ये क्या हुआ, कैसे पेड़ गिरा, नीचे आए, निकट में जब कृष्ण के आए, दिखा रहे ये तो उखल से बंधा हुआ है, ये किसने बांधा है? और ये कैसे हुआ, बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा अरे ये कृष्ण ने छू दिया इन वृक्षों को और ओखल से लग करके ये वृक्ष गिर गए और इसमें से दो देवता निकले बड़े सुंदर और कृष्ण की परिक्रमा की और स्तव स्तुति की और फिर उत्तर दिशा में चले गए। बाबा ने कहा ये बच्चे तुतुला तुतुला करके कह रहे हैं, इन पर विश्वास नहीं है कि कृष्ण ऐसा कर सकता है। इसे विश्वास नहीं हुआ, कृष्ण से को गोदी में ले लिया और इधर कृष्ण देखते ही नंद बाबा को, जो अब तक सखर रस में डूबे हुए कुछ अभी हंस रहे थे, कालिख लगी हुई थी यहाँ वहाँ, और बाबा को देख करके और उनका स्नेह पा करके बड़े जोर से रोने लगे। उनका रोना देख करके बच्चों का भी हृदय दबे, वो भी उनमें से भी कुछ ऐसा। उन्होंने कहा यदि बच्चा दब गया होता तो न जाने क्या होता। नंद बाबा जी के आंखों से भी आंसू आ गए, जट उन्होंने गोदी में बैठाया, बैठा करके और धीरे 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 उसको खोल दिया बंधन को। बात्सल्य रस का बंधन बात्सल्य ही खोल सकता है या मधुर खोल सकता है, सख्य दास्य ये शांत वाले नहीं खोल सकते हैं। ये बंधन प्रेम का बंधन है, ये समझो कोई लकड़ी या रस्सी का ये बंधन नहीं है। नंद बाबा ने धीरे धीरे खोला, तब एक समझिए, नंद बाबा कृष्ण को प्यार करते हैं, यशोदा मैया कृष्ण को प्यार करती है, इन दोनों में प्रेम का वैशिष्ट्य, कृष्ण के प्रति किसका अधिक प्रेम है। इन दोनों में जो दुख हुआ नंद बाबा को और यशोदा मैया को, यशोदा तो काठ हो गई, चल नहीं सकी, कृष्ण के निकट भी नहीं आ सकी। नंद बाबा अभी कुछ सांत्वना देने के मूड में हैं, उनका दुख उतना अधिक नहीं है जितना कि यशोदा का, तभी बात्सल्य रस का बंधन उन्होंने खोला। बाबा ने बंधन खोल करके रोते हुए कृष्ण को सांत्वना देने के लिए पॉकेट से एक लड्डू गुड़ का निकाला, सब समय रखते थे कृष्ण को कुछ न कुछ देने के लिए, निकाल करके कृष्ण को दिया और कृष्ण सिसकते हुए न, और त्रिवली हिल रही, गले की माला जो हिल रही, पेट की त्रिवली भी लगी हुई और सिसकते हुए सिसक रहे थे। बाबा ने पूछा अरे तुमको किसने बांधा, बांधा किसने, पूछने पर भी बतला नहीं रहे, मैया ये मुख से नहीं निकल रहा। फिर मैंने कहा कि बतलाओ तो सही, कोई जो हम से दंड देंगे, तुम बतलाओ किसने। तो मैया ने बांधा। अच्छा मैया इतनी निष्ठुर हो गई, मैं तो नहीं जानता था कि मैया इतनी निष्ठुर हो गई है, और तो जो निष्ठुर तहर मां हमें जानता हूं ना। अच्छा दंड तो दे नहीं सकते, दंड क्या देंगे, बातचीत किसी से नहीं करना, प्रेमी व्यक्ति से बात नहीं करना उसके लिए सबसे बड़ा दंड है। ठीक है, अच्छा अत्यंत गंभीर हो गए और गंभीर होने के बाद में उन्होंने कृष्ण को और बलदेव दोनों को गोदी में उठाया, एक तरफ में बाएं तरफ में, दाहिने तरफ में कृष्ण को बाएं तरफ और दाहिने तरफ में बलदेव को धारण कर दिया। ब्रह्मांड अभास में गए और वहां जाकर स्नान किया, बच्चों को स्नान कराया, मलमल करके धो करके उनका काली इत्यादि सब छुड़ाया, छुड़ा करके घर आए। रोहिणी जी बड़ी बुद्धिमती थी, आज घर में रसोई नहीं बनी, रोहिणी जी ने किसी तरह से थोड़ा सा रसोई बनाया बाबा के लिए और बच्चों के लिए। बाबा घर में आए, किसी से बात नहीं किया और आकर के बैठ गए। कृष्ण को गाय जा रहा थी, छिड़क में ले गए और मिश्री दे करके मुख में बच्चों को और धारोष्ण से पेट एकदम उनका भर्ती कराया, दोनों का पेट भर गया। पेट भरने के बाद में आए धीरे 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 कुछ प्रसाद जो रोही मैया ने दिया बेमन से उन्होंने बच्चों को खिलाया थोड़ा थोड़ा और थोड़ा सा अपने दिया और अपने दरबार में बैठ गए। पहले धनी लोगों का ऐसा नियम होता था, ये एक अंतःपुर होता था जहां पर महिलाएं रहती थीं और एक होता था बहिर्द्वार, बहिर्द्वार में उनका दरबार लगता, गांव के बड़े बड़े लोग रईस लोग आते बैठते उनसे बात होती, इसको दरबार नंद जी का दरबार कहा जा सकता है। बाहर में घर से आकर के बैठ गए, कृष्ण ने बलदेव को ले लिया। अब करते 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 चार पांच छह बज गया, शाम हो गई। उपानंद की स्त्री नंद बाबा की भाभी लगती है, भाभी मैया के समान होती है। रोहिणी जी कुटुंब की महिलाएं वृद्धा ये सभी एकत्रित हो गए, बलदेव को साथ लिया और वहां पहुंच करके इसको बलदेव को भी जाओ कृष्ण को पकड़ लाओ। बलदेव जी गए कृष्ण को पकड़ने के लिए, आज कृष्ण ने ऐसा थोड़ा सा झटका दे दिया ये बलदेव प्रभु जी गिर गए, आज नहीं ला सके और वो ऐसे देख रहे हैं बलदेव प्रभु। उपानंद की स्त्री वहां पर पहुंची, बोली अरे बेटा मैया के यहां चल। ओ हो मैं नहीं जाऊंगा, रोहिणी मैया ने भी कहा मैया के यहां चल, मैया रो रही है तुम चल, नहीं जाऊंगा। खाएगा क्या, कहां किसके साथ रहेगा, बाबा के साथ में, रात में सोएगा कहां, आज तक तो मैया के पास में सोया है जीवन भर और कहां सोएगा, बाबा के साथ। अरे खेलेगा किसके साथ में, दाऊ भैया के साथ में। उन्होंने कहा जो नंद बाबा ने कहा रोहिणी मैया के यहां तो जा। उन्होंने कहा जो आज हमको छोड़ करके चली गई, मैंने बहुत पुकारा ये भी नहीं आई, इसके पास भी नहीं जाऊंगा। जब सब हार गए तो रोहिणी मैया ने जसोदा मैया की जो स्थिति वर्णन किया, नंद बाबा का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने पूछा बेटा मैं जसोदा को पीट दूं, कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ दिया और कुछ रोना रोना जैसा भाव आया। तब जब देखा कि किसी प्रकार से नहीं होता है तो रोहिणी मैया ने कहा तू जाएगा नहीं, अब तुम्हारी मैया यदि मर जाए नहीं कहा कहा ऐसी हो जाए तो जहां सुना कृष्ण डकर डकर करके मैया मैया कह करके रोने लगी। रोहिणी की रोने लगी, उपानंद की मैया रोने लगी, स्वयं नंद बाबा भी रोने लगे, बलदेव भी रोने लगे। वहां पर एक बीरा का इच्छा गया, सभी लोग रोने लगे और कृष्ण ने हाथ उठाया मैया मैया, रोहिणी ने गोदी में ले लिया और रोहिणी जी लेकर के जसोदा मैया कांच की तरह थी, अभी रो नहीं पा रही थी, वो एक तरह से बेहोश थी। जसोदा जी के गोदी में देने के साथ ही साथ में एक बात जैसे पहाड़ों में लावा फूटता है ज्वालामुखी, वैसे उनका बिरह एकदम फूट उठा और बड़े जोर से लाला लाला कह करके बेटा बेटा कह करके बड़ी जोर से रोने लगे। सब लोग उनको सांत्वना देने लगे, सब ताके सांत्वना दीजिए। तापरे जखन सब कुछ खान कानते 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 जखन एक सांत्वना हलो तखन रोहिणी मैया दिखे अल्प भावे रान्ना करे छेन। नंद बाबा को परोसा गया। कृष्ण आज नंद बाबा बलदेव और इनको कृष्ण को बैठा करके उसको थोड़ा थोड़ा कुछ खिलाया, थोड़ा सा अपने खाया। पहले बोला नंद बाबा, बोले जाओ जसोदा को भेज दो, वो खिलाएगी हम लोगों को। किंतु जसोदा जी नहीं आई। कृष्ण ने नंद बाबा ने कृष्ण को अपनी मैया को बुला ला। तो कृष्ण दौड़े हुए गए और मैया का आंचल पकड़ करके खींचने लगे और उनको किसी प्रकार से खींच करके, मैया मना नहीं कर सकी, जबरदस्ती खींच करके ले आए। वहां पर वो जसोदा मैया बैठी, दोनों ने भोजन किया। इसके बाद में रोहिणी मैया ने कहा जे तुम भी भोजन नहीं कर रहे थे, नंद बाबा तो भोजन नहीं करेंगे। कहे नहीं, पहले ये भोजन कर ले, मैं भोजन करूंगी। इसके बाद सब लोगों ने नंद बाबा के खाने के बाद में घर में गई और उसका जो बचा हुआ था उसे जसोदा मैया ने खाया, रोहिणी मैया ने सबको खिलाया और फिर वैसे एकदम सब बदल गया। इस प्रकार से एक साथ में कितने प्रकार की लीलाएं कृष्ण ने की, इसमें बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं। हम लोग विस्तार से और इसे बतलाएंगे। आज हम यहीं पर अपना क्लास समाप्त करते हैं, अभी ये व्याख्या करके बतलाएंगे।